हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर तक वे दोनों इसी तरह एक दूसरे के गले लगे रहे। अंबिका ने वेदांश को इस तरह गले लगाया था जैसे वो उसे खुद में समेटने की कोशिश कर रही हो। वेदांश भी किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी आगोश में था। कुछ देर बाद अंबिका को एहसास हुआ कि वेदांश किस बात को सोचकर ऐसा रिएक्ट कर रहा था। उसने तुरंत वेदांश को खुद से दूर किया और बोली, हाँ, भले ही तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन तुम ही वजह हो। अगर तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है तो क्या हो जाता अगर तुम उसे और मेरे भाई को एक्सेप्ट कर लेते? लेकिन तुम्हारा ये ईगो, तुम्हारा ये फालतू का एटीट्यूड, तुम्हारी रेप्यूटेशन, स्टेटस, कोई नहीं बचा पाया उसे। अंबिका को वेदांश के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसने सोचा कि मिशिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो उसे सबसे ज्यादा दर्द मिशिका के लिए ही लगा। कुछ देर के लिए वो भूल गई कि वेदांश भी दर्द और तकलीफ में था। अंबिका के इस रिएक्शन पर वेदांश सन रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन उसके अंदर का गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था और वो कमजोर भी पड़ रहा था, पर वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसे फर्क पड़ रहा है। इसलिए उसने तुरंत अंबिका का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, चुप करो, मैंने किसी को ये हक नहीं दिया कि कोई मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर इल्जाम लगाए। अंबिका ने गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही मिस्टर वेदांश ठाकुर, लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच, तुम इसे मानो या नहीं। उसकी बात में मजबूती नजर आ रही थी। वेदांश भी जानता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन वो ये सच सुनने और मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने गुस्से में अंबिका का हाथ और कसकर मरोड़ते हुए कहा, चुप करो, अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। अंबिका गुस्से से चिल्लाई, इससे बुरा अब क्या करोगे तुम? मेरी इज्जत के साथ तो खेल चुके हो। अगर मुझे जान से भी मार दोगे तो ये मुझ पर एहसान ही होगा, लेकिन तुमने तो मुझे मरने भी नहीं दिया। इसी तरह जिंदा रखना चाहते हो मुझे, इससे बुरा और क्या करोगे तुम मेरे साथ? अंबिका को अपने हाथ में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वो इससे कहीं ज्यादा था। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं, इसलिए उसके अंदर शायद कोई डर नहीं बचा था। लेकिन वेदांश को अंबिका का ये हिम्मत दिखाना और इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो अपनी बहन को खोने के दुख में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ भी सुन लेगा। वेदांश ने उसे गुस्से से पीछे धकेलते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं थोड़ा सा नरमी से पेश आया, तुम तो भूल ही गई थी मैं कौन हूँ। वेदांश के ऐसा करने पर अंबिका संभल नहीं पाई और पीछे पड़े बेड पर गिर गई। वेदांश तुरंत उसके ऊपर झुक गया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, भूलना मत, मैं वेदांश ठाकुर हूँ और मुझे बदलना इतना भी आसान नहीं है। अंबिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वेदांश के चेहरे को देखते हुए मजबूती से कहा, और तुम्हें बदलने का कोई शौक भी नहीं है मुझे, और पता है तुम हमेशा डेविल ही रहोगे। तुम्हारे अंदर का ये शैतान कभी नहीं मर सकता वेदांश, कभी नहीं। वेदांश ने गुस्से से कहा, जो चाहे कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद अगर तुमने जान देने के बारे में या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा या ऐसी कोई कोशिश की, तो इसकी कीमत तुम नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का कोई चुकाएगा, याद रखना। अंबिका ने मायूसी से कहा, बस यही आता है ना तुम्हें, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ना तो अपना परिवार बचा पाए और मेरे परिवार के भी पीछे पड़े हुए हो। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या तुम्हें अपनी बहन को खोने का जरा सा भी दुख है? वेदांश ने अंबिका के दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जो चला गया अब उसके लिए रोकर भी क्या फायदा है? उसकी ये बात सुनकर अंबिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जिस तरह वेदांश ने ये बात बोली, सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ता है, या फिर शायद वो कुछ छुपा रहा था। अंबिका उसकी तरफ देखते हुए उसे समझने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज पहली बार अंबिका के इस तरह बोलने पर वेदांश को बुरा लग रहा था। इससे पहले सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी उसे कुछ भी कहे, लेकिन आज भले ही वो ये बात बोल रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फर्क पड़ रहा था। बस वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसने गुस्से से अंबिका को देखा और अंबिका उसकी आंखें देख रही थी। कुछ पल के लिए वे दोनों इस तरह एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दोनों ने अपने दिल में कुछ अलग दिशा महसूस की, लेकिन दोनों ही अलग अलग दर्द और तकलीफों से गुजर रहे थे। तभी वेदांश धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अंबिका को भी शायद समझ आ गया था कि वो क्या करने वाला है, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से चादर को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वेदांश ने अंबिका के नाजुक गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अंबिका को समझ आ गया था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे रोक नहीं पाई। उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था अपने परिवार को लेकर, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी था जिसकी वजह से वो वेदांश को अपने करीब आने से नहीं रोक पा रही थी। चाहे उसकी नज़र में वो कितना ही खलनायक क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंबिका को वो कुछ अलग महसूस करवाता था, जैसा कि आज तक किसी ने नहीं करवाया था। वे दोनों ही इस बात से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि वे इस बारे में कभी बात नहीं करते थे। वेदांश ने अंबिका के होठों को हल्के से अपने दांत से काटा। अंबिका के मुंह से एक दर्द भरी सिसकारी निकल गई और उसने वेदांश के बालों को कसकर पकड़ लिया। वेदांश ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और वो पूरी तरह अंबिका के ऊपर आ गया। उसने अंबिका को सीधा लिटाया और उसके दोनों साइड पर अपना हाथ रखते हुए वो हल्का सा पीछे हुआ और अंबिका के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगा। अंबिका की आंखें बंद थीं और उसके गुलाबी होंठ पर खून की एक बूंद नजर आ रही थी। अंबिका अपनी आंखें खोल पाती उससे पहले ही अंबिका को अपने होठों पर कुछ महसूस हुआ। वेदांश इस बार उसे किस नहीं कर रहा था, वो कुछ और ही कर रहा था। अंबिका को जैसे ही फील हुआ कि वेदांश उसके होठों को चाट रहा है, अंबिका के मुंह से फिर एक हल्की सिसकारी निकल गई। उसने वेदांश की छाती पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेदांश इस वक्त उसे दूर नहीं होना चाहता था, उसने बस हल्का सा जोर लगाया और उनके बीच की दूरी एकदम खत्म हो गई। अंबिका का हाथ अब साइड में था और वेदांश उसके ऊपर था। अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अंबिका ने कसकर अपने दोनों होठों को बंद कर लिया ताकि वो उसे किस ना कर पाए, लेकिन वेदांश पहले ही उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ गया था और उसके हाथ अंबिका की कमर पर थे। अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ चाहती है या नहीं, लेकिन वो पूरी तरह उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। ये शायद करना ही नहीं चाहती थी। जो भी था, वो इस वक्त बहुत ज्यादा उलझन में थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की तो उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे।
वेदांश ने जब उसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखा तो एक पल के लिए वो रुक गया। उसने एक हाथ आगे बढ़ाकर अंबिका के गालों पर बह रहे आंसू को पोंछा और फिर अपने होंठ उसके गाल पर रखकर वहां पर चूमने लगा। अंबिका को अपने मन में गुदगुदी सी महसूस हुई और वो एकटक वेदांश के चेहरे की तरफ देखने लगी। इस वक्त वो उसे काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। ऐसा करते हुए वेदांश अंबिका को एक ऐसी नई फीलिंग दे रहा था जो अंबिका ने खुद कभी महसूस नहीं की थी। अंबिका के हाथ एकदम वेदांश की पीठ पर कस गए। क्रमशः सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि 4 दिन के बाद ये एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाकी दोनों स्टोरी के पार्ट का प्लीज वेट मत करें क्योंकि वे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब उनके आगे के पार्ट नहीं आएंगे, लेकिन वो स्टोरी जरूर पूरी होगी। प्रतिकृति पर आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए, हम चैनल पर लिंक दे देंगे। और जो चैनल पर नहीं है वे पिछले एपिसोड में से लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कर लें। जिन लोगों को भी उनकी शादी का इंतजार है उनके लिए भी कुछ है। बहुत जल्दी होने वाली है इन दोनों की शादी भी, और भी बहुत कुछ। उम्मीद है आप लोग इस पर सपोर्ट करेंगे तो ये वाली कम से कम ऐसा सेलेक्ट हो जाए तो फिर रेगुलर एपिसोड मिलेंगे आप लोगों को। हम भी यही चाहते हैं और शायद आप लोग भी।